एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में स्वागत। आज हम जॉर्ज सॉन्डर्स के मैन बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास लिंकन इन द बार्डो की अनूठी दुनिया में झांकेंगे। ये उपन्यास मतलब इतिहास, कल्पना और गहरी मानवीय भावनाओं को बिल्कुल एक नए अंदाज में हमारे सामने रखता है।
हाँ बिल्कुल। और जॉर्ज सॉन्डर्स वैसे तो लघु कथाओं के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। उनकी कहानियों में अक्सर वो कामकाजी वर्ग के पात्रों के प्रति गहरी सहानुभूति दिखती है।
हाँ, और भाषा पर पकड़ भी कमाल की है।
बिल्कुल, उनका लिखने का दर्शन ही रैडिकल एम्पथी मतलब कट्टर सहानुभूति पर आधारित है, ऐसा कहते हैं। तो कई साल छोटी कहानियाँ लिखने के बाद 2017 में ये उनका पहला उपन्यास आया।
और ये एक सच्ची ऐतिहासिक घटना से प्रेरित है ना? वो बात जिसने सॉन्डर्स को सालों तक सोचने पर मजबूर किया।
हाँ, वो फ़रवरी 1862 की एक रात, जब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने 11 साल के बेटे विली की मौत के बाद, टाइफाइड से हुई थी उसकी मौत, तो वो जॉर्जटाउन के ओक हिल कब्रिस्तान में उसकी कब्र पर गए थे। और कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि उन्होंने दुख में बेटे के शव को थामा भी था।
बहुत मार्मिक।
और इसी एक क्षण को सॉन्डर्स ने अपनी कल्पना का आधार बनाया।
बिल्कुल।
और इसे बुना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट के साथ, बार्डो। ये तिब्बती बौद्ध अवधारणा है।
बार्डो मतलब वो मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवस्था।
हाँ, एक तरह की मध्यवर्ती जगह, एक लिमिनल स्पेस। उपन्यास में ये ओक हिल कब्रिस्तान ही बार्डो बन जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ आत्माएं फंसी हुई हैं।
क्यों फंसी हुई हैं?
क्योंकि वो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाई हैं, अपनी सांसारिक इच्छाओं में, अपने पछतावों में, मतलब उलझी हुई हैं।
तो कहानी इसी कब्रिस्तान, इसी बार्डो से शुरू होती है, जहाँ 11 साल का विली लिंकन पहुंचता है।
हाँ, एक बच्चा बिल्कुल भ्रमित सा, अपने पिता का इंतजार करता हुआ। वो अपने ताबूत को भी सिक बॉक्स कहता है, जैसे ये कोई बीमारी हो जिससे वो ठीक हो जाएगा।
लेकिन आपने कहा ये जगह फंसी हुई आत्माओं की है, तो बच्चों के लिए?
हाँ, यही उपन्यास का एक नियम है, बच्चों के लिए बार्डो बहुत खतरनाक जगह है। अगर वो ज्यादा देर रुके तो उनका क्षय मतलब एक तरह का भयानक विघटन शुरू हो जाता है। उसे मेटालाइट ब्लूमिंग कहा गया है।
ओह, तो विली खतरे में है।
बिल्कुल। और उसके आने से कब्रिस्तान की कुछ पुरानी आत्माओं में कह सकते हैं एक हलचल मचती है। दो खास तौर पर, हैंस वोलमैन और रॉजर बेवन्स थर्ड।
अच्छा, ये कौन है?
ये दोनों भी अपनी अपनी अधूरी इच्छाओं के प्रतीक जैसे हैं। हैंस वोलमैन एक अधेड़ उम्र का आदमी था, अपनी शादी की रात ही मतलब शारीरिक संबंध बनाने से ठीक पहले एक दुर्घटना में मर गया।
तो उसकी आत्मा,
उसका भूतिया रूप उसकी उसी अधूरी यौन इच्छा को दिखाता है, मतलब शारीरिक रूप से।
समझ गया। और दूसरा,
रॉजर बेविन्स थर्ड एक नौजवान संवेदनशील समलैंगिक व्यक्ति, जिसे उसके प्रेमी ने अस्वीकार कर दिया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा के कई आंखें हैं, कई हाथ हैं, जैसे वो जीवन को और ज्यादा महसूस करना चाहता था। हर रंग, हर स्पर्श, उसकी भाषा भी बहुत काव्यात्मक है उपन्यास में।
तो ये दोनों, वोलमैन और बेविन्स, जो खुद अपनी तकलीफों में उलझे हैं।
हाँ, यही तो बात है, वो खुद फंसे हैं, लेकिन वो एक मिशन बनाते हैं, विली को इस खतरनाक जगह से बाहर निकालने में मदद करना।
ये तो बड़ा विरोधाभासी है।
है, पर यही उपन्यास का भावनात्मक केंद्र भी है। उन्हें विली को समझाना है कि उसे आगे बढ़ना होगा, लेकिन वो सीधे बात नहीं कर सकते।
तो फिर कैसे?
उनका तरीका है विली के मन में घुसना, अपनी यादें, अपने अनुभव, अपने पछतावे, वो सब साझा करना।
अच्छा, और इसी दौरान लिंकन भी आते हैं कब्र पर पहली बार।
हाँ, पिता पुत्र का वो मिलना बड़ा मार्मिक है। विली कुछ देर के लिए अपने पिता के शरीर में जैसे प्रवेश कर जाता है।
और वो क्या महसूस करता है?
वो महसूस करता है पिता का गहरा दुख तो है ही, पर साथ ही गृह युद्ध का वो भयानक बोझ, राष्ट्रपति होने की जिम्मेदारियां। उसे समझ आता है कि उसके पिता कितनी मुश्किल, कितनी असंभव सी स्थिति में हैं।
ये उपन्यास की बनावट के बारे में भी कुछ बताता है शायद। ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है।
बिल्कुल नहीं। सॉन्डर्स का तरीका बहुत अनोखा है। अध्याय जैसे बदलते रहते हैं। एक तरफ कब्रिस्तान में भूतों के टूटे फूटे संवाद हैं, उनके मोनोलॉग्स जो उनकी फंसी हुई चेतना को दिखाते हैं।
हाँ।
और दूसरी तरफ बीच बीच में ऐसे अध्याय आते हैं जो पूरी तरह से ऐतिहासिक दस्तावेजों से बने हैं, चिट्ठियां, डायरी, अखबारों के हिस्से।
अच्छा, ये क्यों, मतलब इसका क्या असर होता है?
ये काल्पनिक और ऐतिहासिक के बीच एक पुल बनाता है, एक संवाद। ये दिखाता है कि सच, जिसे हम कहते हैं, वो कितना बहुस्तरीय होता है। एक ही घटना को कितने अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं।
हाँ, ये पॉलीफोनी यानी बहुस्वरता।
बिल्कुल, ये उपन्यास को बहुत गहराई देती है। इतिहास सिर्फ बड़े लोगों का नहीं होता, है ना? वो आम लोगों की अनगिनत आवाजों से भी बनता है।
सही का। तो कहानी आगे बढ़ती है, रात गहराती है और विली की हालत
वो बिगड़ने लगती है। भूतों को एहसास होता है कि वक्त कम है। यही कुछ और पात्र भी सामने आते हैं, जैसे रेवरेंट एवली थॉमस।
ये कौन है?
एक पादरी जो धार्मिक पाखंड और खासकर गुलामी की भयावहता देखकर अपना विश्वास खो चुका है। वो बार्डो में फंसा है और मानता है कि वो नर्क में है। वही मैटरलाइट ब्लूमिंग की चेतावनी देता है।
तो अब भूतों पर दबाव बढ़ जाता है।
हाँ, उनका प्रयास तेज हो जाता है। वो बारी बारी से विली के मन में अपनी कहानियां डालते हैं, और इस कोशिश में, अनजाने में ही सही, वो खुद अपने बंधनों का सामना करने लगते हैं।
मतलब विली को बचाने की कोशिश उनकी खुद की मुक्ति का रास्ता बन जाती है।
बिल्कुल, यही उपन्यास का एक बहुत सुंदर पहलू है कि सहानुभूति, दूसरों की मदद करने का काम कैसे हमें खुद को भी बदल सकता है, हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठा सकता है।
इसमें और भी पात्र होंगे जो मदद करते हैं।
हाँ, जैसे एलिजा ट्रेनर और बेट्सी बैरन। वो 19वीं सदी के वर्ग भेद को दर्शाती हैं। मौत के बाद भी वो तनाव है, लेकिन विली की मासूमियत के सामने वो भी एक हो जाती हैं। एक साझा मानवीय चिंता उन्हें जोड़ती है।
और फिर कहानी का चरमोत्कर्ष आता है जब लिंकन दूसरी बार आते हैं।
हाँ, रात में, और ज्यादा टूटे हुए, ज्यादा दुखी, और इस बार वॉलमन और बिविन्स के कहने पर भूतों का एक बहुत बड़ा समूह एक साथ लिंकन के शरीर में प्रवेश कर जाता है।
क्या एक साथ? ये तो अद्भुत कल्पना है। वो क्या महसूस करते हैं लिंकन के अंदर?
वो महसूस करते हैं लिंकन का दोहरा दुख, एक पिता का अपने बेटे के लिए अथाह दर्द, और ठीक वैसा ही दर्द एक राष्ट्रपति का अपने देश के लिए, गृह युद्ध में मारे जा रहे हजारों सैनिकों के लिए।
ओह,
भूतों को समझ आता है कि लिंकन के लिए हर सैनिक जो मर रहा है वो किसी का विली है। व्यक्तिगत पीड़ा और राष्ट्रीय पीड़ा जैसे एक हो जाती है, एक असहनीय बोझ। और ये साझा अनुभव ये भूतों को भी बदल देता है।
तो इस अनुभव का लिंकन पर क्या असर होता है? क्या उनका दुख चला जाता है?
नहीं, दुख जाता नहीं है, लेकिन उसे एक नया आयाम मिलता है, एक संदर्भ। वो अपने निजी शोक को देश की बड़ी पीड़ा से जोड़ पाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उन अनगिनत विलियों के लिए जिनके पिता शायद युद्ध में हैं।
तो उन्हें अपने बेटे को जाने देने की ताकत मिलती है, और नेतृत्व करने की भी।
हाँ, एक नैतिक शक्ति मिलती है, और भूतों पर भी असर होता है। लिंकन की वो विशाल सहानुभूति महसूस करके और विली की मदद करने के उस निस्वार्थ काम से, वो अपनी आसक्ति से, अपने स्वार्थ से मुक्त होते हैं।
अंतिम दृश्य कैसे हैं?
बहुत शांत, बहुत मार्मिक। लिंकन विली को प्यार से विदा करते हैं और फिर व्हाइट हाउस लौट जाते हैं, एक बदले हुए इंसान के तौर पर, भारी मन से, लेकिन एक नए उद्देश्य के साथ।
और विली?
विली पिता के जाने देने के बाद मुक्त होकर प्रकाश की ओर चला जाता है, बार्डो से बाहर।
और बाकी भूत?
कई और भूत भी, जिन्होंने वो सहानुभूति और निस्वार्थता सीखी, वो भी आगे बढ़ जाते हैं। कब्रिस्तान लगभग खाली हो जाता है। वोलमैन और बेविन्स वहीं रहते हैं, लेकिन वो भी बदल चुके हैं।
कैसे बदले हैं वो?
उन्होंने मुक्ति अपनी पुरानी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं पाई, बल्कि दूसरों से जुड़ने में, दूसरों की मदद करने के उस काम में पाई।
ये कहानी वाकई कई गहरे सवाल उठाती है। सबसे पहला तो दुख का ही सवाल है। कैसे दुख को पकड़कर रखना एक जेल बन सकता है?
हाँ, बार्डो में फंसी हर आत्मा उसी कैद में है, है ना? सॉन्डर्स दुख को नकार नहीं रहे, पर वो पूछ रहे हैं कि क्या सच्चा प्यार कभी कभी जाने देने की मांग नहीं करता? लिंकन का विली को जाने देना, वो आसक्ति का अंत है, प्रेम की शायद सबसे मुश्किल परीक्षा।
बेविन्स का एक कथन याद आता है, जहां वो लिंकन और विली को देखकर कहता है, वी वर अ स्ट्रेंज साइट।
शायद वो जीवित और मृत, दुख और प्रेम के बीच की उस धुंधली सीमा की बात कर रहा है। लिंकन के जरिए ये देखता है कि कैसे एक नेता का निजी दुख उसे या तो पंगु बना सकता है, या फिर उसे असीम सहानुभूति से भर सकता है।
हाँ, वो रात लिंकन को बदल देती है। उन्हें एहसास होता है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ फैसले लेना नहीं है, बल्कि मानवीय पीड़ा के साथ गहराई से जुड़ना है।
बिल्कुल, जब भूत लिंकन के अंदर होते हैं वो महसूस करते हैं कि उसका दुख कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। वो व्यक्तिगत और राष्ट्रीय बोझ एक हो गए हैं। युद्ध की मानवीय कीमत को समझना कितना जरूरी है।
और कब्रिस्तान खुद, वो जैसे मृत्यु के लोकतंत्र का प्रतीक बन जाता है। वहां वर्ग नस्ल कुछ मायने नहीं रखता।
सही कहा, पूर्वदास, अमीर व्यापारी, सैनिक, आम नागरिक सब एक ही तल पर हैं, अपने अपने अधूरेपन के साथ। ये उस समय के समाज पर भी एक टिप्पणी है, और ये भी कि दुख और मौत सबको एक ही धरातल पर लाते हैं।
हाँ, वो ऐतिहासिक आवाजों का कोरस भी यही दिखाता है, हर किसी का अपना दुख है।
प्रेम और बलिदान पर भी ये उपन्यास सोचने को मजबूर करता है। वो आसक्ति वाला प्रेम और करुणा वाला प्रेम, इसमें फर्क है। वुलमैन और बेविन्स को विली की देखभाल में एक नया अर्थ मिलता है जो उन्हें उनकी स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त करता है।
और लिंकन का बलिदान तो है ही।
हाँ, एक जगह कहा भी गया है कि जीवन की छोटी मोटी उपलब्धियां उस दयालुता के सामने कुछ नहीं है जो जरूरत के वक्त दिखाई जाए। शायद ये उपन्यास के केंद्रीय संदेशों में से एक है।
राइट।
रेवरेंड थॉमस का पात्र वो धार्मिक संकट को भी सामने लाता है ना। कैसे कई बार स्थापित धर्म जीवन की कड़वी सच्चाइयों जैसे गुलामी या युद्ध का सामना करने में नाकाफी लगते हैं।
बिल्कुल।
और बार्डो की अवधारणा एक तरह का वैकल्पिक आध्यात्मिक ढांचा देती है जो सिद्धांतों से ज्यादा करुणा पर जोर देता है।
और अंत में उपन्यास की वो बनावट ही, वो ऐतिहासिक टुकड़े और भूतों की कहानी का मिश्रण, वो खुद सच की बहुलता के बारे में कुछ कहता है।
हाँ, कि इतिहास कोई एक सीधी कहानी नहीं है, वो कई आवाजों, कई नजरियों से मिलकर बनता है हमेशा।
शैली की बात करें तो ये बहुस्वरता, वो प्रतीकवाद जैसे भूतों के शारीरिक रूप, उनकी मानसिक स्थिति दिखाते हैं।
हाँ, वुलमैन का लिंग, बेविन्स की कई आंखें, हाथ,
और 19वीं सदी की भाषा का वो सावधानी से इस्तेमाल, और ऐतिहासिक और काल्पनिक के बीच का वो तनाव, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही अलग अनुभव बनाते हैं।
हाँ, पढ़ने में शायद शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, ये कोई आसान उपन्यास नहीं है, लेकिन इसका भावनात्मक असर बहुत गहरा है। ये इतिहास को, लिंकन जैसे व्यक्ति को, मतलब एकदम जीता जागता बना देता है।
और दुख से गुजर रहे लोगों को शायद ये सीधे जवाब ना दे, पर
ये प्रेम, सहानुभूति और मानवीय जुड़ाव की अहमियत को फिर से स्थापित करता है बहुत खूबसूरती से।
ये हमें याद दिलाता है कि सहानुभूति सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं है बल्कि एक तरह की राजनीतिक जरूरत भी है, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता।
बिल्कुल। और शायद नश्वरता का सामना ही हमें जीवन को ज्यादा ईमानदारी और करुणा से जीने की प्रेरणा देता है। दुख अंत नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है जो हमें बदल सकती है, गहरा बना सकती है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि ये उपन्यास सिखाता है कि हमारा अपना गहरा दुख भी हमें दूसरों के लिए ज्यादा संवेदनशील बना सकता है, हमें अपने छोटे से दायरे से बाहर निकाल सकता है?
हाँ, मुझे लगता है ये बिल्कुल कह सकते हैं। और शायद सहानुभूति ही वो पुल है जो हमारी व्यक्तिगत पीड़ा को एक बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी से जोड़ता है, जैसा लिंकन के साथ हुआ। ये समझना कि हर कोई किसी न किसी तरह से जूझ रहा है, यही हमें इंसानियत में जोड़ता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।